आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज चित्रकूट धाम से राम यात्रा का किया शुभारंभ। सिडनी में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। और प्रदेश के मौसम में अगले 4 दिनों तक बदलाव के आसार। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने व्रत रखने वालों की अटूट भक्ति को नमन करते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की गहन आस्था और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को छठ पूजा के आरंभ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि छठी मैया और सूर्यदेव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। उधर रेल मंत्रालय ने छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए 6,181 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। अगले 3 दिनों में 900 से अधिक विशेष ट्रेनें संचालित की जाएगी। यात्रियों ने भी रेलवे की व्यवस्था की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें ट्रेन यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा सर, ये कि बस मुझे टिकट मिल गई, मेरी फैमिली अच्छे से आ गई और इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए। फेस्टिवल में जो कितनी भीड़ और दिल्ली में आपको पता है कि कितना क्राउड होता था चलने में, बट वहाँ पे भी अब मैनेजमेंट काफी अच्छा कर रखा था कि लाइन वाइज से आराम से ट्रेन में चढ़ो और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। जैसा मैंने सोचा था ना, डर रही थी मैं, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व कप विजेता खिलाड़ी कपिल देव 30 अक्टूबर को शामिल होंगे।
नमस्कार, मैं कपिल देव 30 तारीख को विदिशा में आ रहा हूं, जहां पर कृषि और गृह मंत्री जी स्पोर्ट्स का उत्सव मना रहे हैं और उनके साथ खेल मंत्री भी होंगे। मैं यही चाहता हूं कि हमारी सरकार अगर इस तरह का काम करती है तो हमें खिलाड़ियों को कितनी खुशी होती है, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि हमारे खेलों को आगे लेके जाया जाए। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इस उत्सव का मज़ा लें। मेरी तरफ से आपको आग्रह किया जाता है कि आप आइए और उत्सव का मज़ा लीजिए। नमस्कार।
कार्यक्रम की जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर साझा की। श्री चौहान ने नागरिकों और युवाओं से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक पल के सहभागी बने। खजुराहो से सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। वे उन 15 भारतीय सांसदों में से एक हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच के लिए चुना गया है। श्री शर्मा 27 से 31 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज चित्रकूट धाम से राम यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा श्री राम के वनगमन मार्गों पर आधारित एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा चित्रकूट से विशेष ट्रेन द्वारा रामेश्वरम, तत्पश्चात हवाई मार्ग से श्रीलंका होते हुए अयोध्या तक पहुंचेगी। इसके साथ ही उन्होंने मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा आपातकालीन सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
इन जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, उर्वरक, इस्पात, डेयरी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जों पर जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। जीएसटी कम होने से वाहनों की कीमत कम हो गई है, इससे वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है और राज्य का निर्यात भी बढ़ा है। इसके साथ ही कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, इससे कृषि लागत में कमी आई है। हरियाणा में सोनीपत, करनाल और पानीपत में सहकारी समितियों में डेयरी उत्पादों पर कम दरों से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हरियाणा के किसान भीम मलिक ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने इससे नए ट्रैक्टर की खरीद पर लगभग 1,25,000 रुपए की बचत की है।
सरकार ने जो ये राहत जीएसटी की दी है तो बहुत अच्छा कार्य किया है। एक ट्रैक्टर के साथ 1.25 लाख रुपए का फायदा होया। मेरे को इतना फायदा होया तो पूरे देश को तो कितना फायदा होगा। छोटी बड़ी चीजें सभी में फायदा है, पूरी जनता को फायदा है, गरीब से अमीर तक सबको फायदा है।
नए जीएसटी सुधारों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत राज्य में रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का 50वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 819 और स्नातक सीटें 1,29,000 हो गई हैं। श्री नड्डा ने कहा कि अब देश में 23 एम्स संस्थान कार्यरत हैं, जो गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य सेवा के विस्तार का प्रमाण है। सिडनी में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की शतकीय पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए थे, हालांकि 3 मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की। इसी बीच इंदौर में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल 97 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 ओवर 5 बॉल में 98 रन बनाकर एक और आसान जीत दर्ज की। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में 28 अक्टूबर तक बूंदाबांदी हो सकती है। इंदौर, भोपाल, धार, खंडवा, जबलपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट के आसार हैं। विभाग का कहना है कि यह बदलाव मानसून की वापसी से जुड़ा है, जो अक्टूबर के अंत तक प्रभावी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में विकसित भारत पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक पदयात्राएं निकाली जाएगी। नर्मदापुरम जिले में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बादराभान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला बादराभान मेला 3 से 6 नवंबर तक आयोजित होगा। 4 दिवसीय मेले में करीब 6 से 7 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। शहडोल जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। नगर के मोहन राम तालाब, बड़ी भीट तालाब और मुन्ना नदी के घाट की सफाई, रोशनी की व्यवस्था, टेंट और पूजा की तैयारी की जा रही है। जाने माने अभिनेता सतीश शाह का आज 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिने NTV आर्टिस्ट एसोसिएशन के अधिकारी अशोक पंडित ने बताया कि श्री सतीश शाह किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें हिंदुजा अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।